जयधवला पुस्तक 14 लेक्चर नंबर 18
ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताम् नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहु उवसमिदसयलदोषे उवसन्तकषाय वीरायन्ते उवसामये पणमिहुं कसाय उवसामणं
उत्तम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 14 पुस्तक में चारित्र मोहि की उपशामना नाम का अर्थाधिकार चल रहा है। हम पृष्ठ संख्या 112 पर आ गए। 114 पर आए।
दो सौ अट्ठावन
वहां से पढ़ेंगे क्या? शायद कल पेज उलट गया तो मैंने वहां पर लिख दिया। तो कभी मैं सोच रही थी यहाँ तो नीचे जो कुछ अंडरलाइन कैसे हो गए आगे। तो हम आए हैं 114 पृष्ठ पर। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हाँ, कल हमने देखा था कि अलग अलग कषायन सहित चढ़ने वाले जीवों में क्या क्या डिफरेंस यानी नानात्व होता है उसकी बात चल रही थी। तो हमने देखा जो क्रोध से चढ़ता है उसके तो हमने डिटेल विस्तार से बात देखी थी। उसके पहले उतरते समय की बात चल रही है, सब चढ़ते समय की बात हो गई है। तो उतरते समय क्या क्या होता है? तो पहले उसके लोभ, तीनों लोभ का आकर्षण होता है उसकी गुण श्रेणी में। जिसका उदय है उसके उदयादि होती है बाकी उदयावली के ऊपर से। उसके बाद उसके वेदन काल, उसका वेदक काल समाप्त होने पर माया वेदक काल शुरू होता है, उसकी वहाँ प्रथम स्थिति और गुण श्रेणी बनती है। ये बढ़कर बनती है, लोभ की भी उतनी हो जाती, फिर मान के और फिर क्रोध के। क्रोध से चढ़ाए और क्रोध से जब उतर उसी से उतरेगा, जब उसका उदय शुरू हो जाएगा अपकर्षण होके, उस समय गुणश्रेणी तो बनेगी बनेगी, वो गलितावशेष होगी, अन्य कर्मों के समान होगी और यहीं पर अंतर पूर्ण किया जाएगा। वेद का नहीं, वेद का अभी बाकी, अब तो संजोलन की ही बाकी। हाँ, वेद अभी उपशमित है, अंतर भी उसका उपशमित ही पड़ा है, तो उसके वहाँ द्वितीय सिद्धि के नीचे आया ही नहीं, उसका आकर्षण ही नहीं हुआ। अंतर नहीं कहेंगे, उसके नीचे ही कुछ है ही नहीं है। अंतर ने प्रथम द्वितीय बनेगी तब अंतर कहेंगे, उसकी प्रथम स्थिति नहीं हुई अभी। जब उसका आकर्षण हो जाएगा तब वो बात बनेगी, उसके तो डायरेक्ट अपकर्षण भी होगा और अंतर भी पूरा हो जाएगा। यानी पूरा नीचे जितना जितनी बड़ी गैप नीचे पड़ी है उसकी बातें तो बाद में करेंगे वेद के उदय के साथ। हाँ, वो संज्वलन कषायों का अंतर पूरा हुआ। हाँ, चार कषाय में लगाना इतना ही, बाकी तो अभी उपशमित है, अनुपशमित नहीं हुए। यानी ये बात यहाँ बताई थी कि अभी हम माया की बात देख रहे थे, जितना क्रोध मान माया का मिलकर जितना काल है उतना चढ़ते समय माया का प्रसन्न उसने बनाई थी प्रसन्न स्थिति, उतरते समय उतनी वो लंबी माया की बनाएगा और तभी उसका अंतर पूर्ण किया जाएगा। परंतु अभी भी क्रोध और मान जो उपशमित है वो अपने अपने काल में उसका आकर्षण होकर उसका उदय चालू है, उसकी भी गुण श्रेणी तब जाके बनेगी। पर गलितावशेष तभी बनेगी जब माया के उदय से,
जिसके उदय के साथ कर रहे हैं,
हाँ, उसका उदय प्रारंभ होते ही
गलितावशेष
गुण श्रेणी बनती है। माया के उदय के साथ है तभी गलितावशेष और तभी अन्य कर्मों के समान बनेगी। फिर जब मान का नंबर आएगा आकर्षण होने का, उस समय मान के द्रव्य नीचे आकर उसकी गुण श्रेणी, उसके पहले उसकी गुण श्रेणी नहीं बनेगी। लोभ की भी गलितावशेष भी उसकी भी बढ़कर माया के समान हो गई, यानी सभी कर्मों की एक समान होगी। तो लोभ की 3, माया की 3 और अन्य की है, ये सब ऊपर के लेवल समान है। जो उदय रूप है माया वो उदयादि है और बाकी उदयावली के ऊपर गुण श्रेणी निक्षेप होता है। यहाँ जो कल हमने जो सूत्र पढ़ा था 113 पर नीचे की लाइन में, और वहाँ गुणश्रेणी निक्षेप विधि को इतर कर्मों के गुणश्रेणी निक्षेप के समान करता है। माया के उदय से अभी उतरा है, उसका आकर्षण होते ही उसकी गुणश्रेणी अभी इतनी बड़ी एक साथ हो जाती, नहीं तो क्या होता, फिर माया की बढ़कर है, फिर मान की बढ़कर होगी, फिर क्रोध की बढ़कर होगी, तब अन्य के समान हो जाती है। अब इसी पॉइंट पर इसकी बड़ी हो जाती है इतनी, तो उसके लिए कारण बताता है, क्योंकि गलित शेष गुण श्रेणी के विषय में अन्य प्रकार संभव नहीं है, यानी यहाँ वो अवस्थित नहीं रह सकते, अभी ये गलित शेष रहेगी। अब यहाँ से पढ़ेंगे विशेषार्थ। यहाँ माया का वेदन करने वाला जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ने के बाद नीचे गिरता है, तब पुनः माया का वेदन करने लगता है। पुनः इन्हें जब अपने यथा समय लोभ के बाद, तब उसके जो कार्य विशेष होते हैं उनका निर्देश करते हुए बतलाया है कि सर्वप्रथम वह 3 प्रकार की माया और 3 प्रकार के लोभ का आकर्षण कर उनका ज्ञानावरणादि कर्मों के समान गुणश्रेणी निक्षेप करता है। कब करता है? जब उसका उदय प्रारंभ होगा तब। किंतु यह गुणश्रेणी निक्षेप गलित शेष होने के कारण प्रति समय जो गुणश्रेणी शेष रहती जाती है उसमें अपकर्षित द्रव्य का निक्षेप करता है। गुणश्रेणी एक एक निषेक से घटती जाएगी, जो बचे हुए निषेकों में गुणश्रेणी रूप से द्रव्य दिया जाएगा, तथा क्रमशः नीचे उतरकर माया का वेदन करते हुए ही वह क्रम से 3 मान और 3 क्रोध का भी आकर्षण कर उनका भी गुणश्रेणी निक्षेप शेष कर्मों के समान करता है। यह भी क्लियर हुआ? अब लोभ के उदय से चढ़े हुए उपशामक के नानापन की गवेषणा करने के लिए, गवेषणा करने ने खोज करना है, टू फाइंड आउट, जिस क्रोध के, हाँ, इसके यही पर अंतर पूरा किया जाएगा। हाँ, क्रोध के यहाँ क्रोध नीचे है ही नहीं है, परंतु बीच में कुछ नहीं था चारित्र मुनि का, तो उतना अंतर भर दिया माया और लोभ दोनों का। देखिए लोभ नीचे आने पर भी लोभ का अंतर समाप्त नहीं हुआ था,
माया के उदय के साथ
माया लोभ दोनों का अंतर पूरा हुआ।
पर ये दोनों,
अब जो 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 नीचे आएगा उसका उसका वहाँ अंतर नहीं रहेगा। हाँ सबकी, अभी माया का तो गलित हुआ ही हुआ, लोभ का भी गलित हुआ तभी से। तो अब लोभ के उदय से चढ़ने वाले की बात करेंगे, तो शुरू से उसका लोभ का उदय था, उतरते समय थ्रू आउट उसकी का रहेगा, तो स्टार्टिंग में उसकी बड़ी गुणश्रेणी हो जाएगी, गलित अवशेष बनेगी, ऊपर पढ़ेंगे। लोभे न उवर्थिदस्स व सामगस्स नानत्तम वत्त इष्टामो। अब लोभ कषाय से श्रेणी पर चढ़े हुए उपशामक की अपेक्षा नानापन को बतलावेंगे। यह सूत्र सुगम है। तम जहा वह जैसे, यह सूत्र भी सुगम है। अंतर कदम एत्ते लोभस्य परमस्थितिं करेदि, जेद्दे ही कोहेन उवट्ठिदस्य कोहस्य परमस्थितिः, मानस्य च परमस्थितिः, मायाये च परमस्थितिः, लोभस्य च सांप्राय परमस्थितिः, तद्देहि लोभस्य परमस्थितिः। वह अंतर किए जाने को मर्यादा करके लोभ की प्रथम स्थिति को करता है। क्रोध कषाय से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव की जितने आयाम वाली प्रथम स्थिति, मान की प्रथम स्थिति, माया की प्रथम स्थिति और लोभ की तथा सांप्राय संबंधी प्रथम स्थिति है, उतने आयाम वाली प्रथम स्थिति स्थापित करता है। ये तो चढ़ते समय की बात है। लोभ से जो चढ़ा था, जब उसने अंतर किया था, तो अंतर को छोड़कर जो नीचे की प्रथम स्थिति है वो कितनी है, जिसकी क्रोध मान माया लोभ की मिलकर होती, उतनी पूरी की पूरी एक ही उसने प्रथम स्थिति बनाई थी। सूक्ष्म सांप्रदाय भी उसमें इंक्लूड है। यह शेष संज्वलनों के बिना लोभ संज्वलन की अंतर किए जाने को मर्यादा करके इतनी बड़ी प्रथम स्थिति को स्थापित करता है। मर्यादा करके ने ऊपर अंतर के निषेध छोड़कर नीचे उसकी पूरी की पूरी प्रथम स्थिति बनाता है। यह नानापन यहाँ पर जानना चाहिए। फिर शंका 115 पृष्ठ। इतनी बड़ी आयाम वाली लोभ की प्रथम स्थिति किस कारण से हो जाती है, उसका समाधान। यह आशंका यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रथम स्थिति के भीतर अनिवृत्ति विषयक समस्त व्यापार विशेष को करने वाले के इस प्रकार की प्रथम स्थिति का होना अवश्यंभावी है। चढ़ने वाले इसके इतना ही नानापन, यानी लोभ सहित चढ़ने वाले के इतना ही डिफरेंस है कि उसकी प्रथम स्थिति बहुत बड़ी है। क्रोध से चढ़ने वाले की जितनी क्रोध मान माया लोभ की मिलकर है उतनी इसकी। सूक्ष्म सांप्राय भी इंक्लूड है, क्योंकि वो भी लोभ वेदक वाला ही काल है। हाँ, सभी कर्मों को उपशमाने का कार्य इसी में हो जाएगा। प्रथम नपुंसक वेद, फिर त्रिवेद, फिर सात मोह कषाय वगैरह, वो सब सब इसमें हो जाए। इसके ऊपर चौथी लाइन पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म लोभ का वेदन करने वाले के कुछ भी नानापन नहीं है। चढ़ते समय की बात चल रही है, यहाँ तक नानापन था प्रथम स्थिति के बारे में। सूक्ष्म सांप्राय में तो वही हो जाता है, सृष्टि बन जाती है। किसी भी कषाय से क्यों न चढ़े हो, लास्ट में तो बादल लोभ का ही हो जाता है, फिर सृष्टि बन जाती है। इस बात का कथन करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार हुआ। आगे सूत्र में क्या आने वाला है आचार्य पहले ही बता रहे। सूक्ष्म सांप्रायम परिवन्नस्य नत्थि नानत्तम। सूक्ष्म सांप्राय को प्राप्त हुए जीव के नानापन नहीं है। यानी ग्यारहवें में से अभी उतर रहे हैं, तो सूक्ष्म सांप्राय में चढ़ने में भी नानत्व नहीं था और उतरने भी नहीं। चढ़ने वाले की अभी सॉरी चढ़ने वाले की बात है। चढ़ने वाले सूक्ष्म सांप्राय को ही लिया है, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि पहले उसकी चर्चा करके फिर सूत्र बताए। सूत्र में आने वाली बात पहले बता चुके थे, चढ़ने वाले की ही बात है यहाँ पर। यह सूत्र सुगम है। अब इसी के पुनः गिरने की अवस्था में, यानी वो ऊपर का जो था वो चढ़ने वाला था, उतरने वाले गिरने वाले की बात अब करेंगे आगे के सूत्र में। इसी के पुनः गिरने की अवस्था में नानापन का अनुसंधान करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। अनुसंधान करना यानी उसको ढूंढ लेना। हा? नहीं नहीं, अनुसंधान यानी फॉलो करना। तस्सेव परिवद मानवस्य सूम सांप्रायम वेदेन तस्य नत्थि नानत्तम। गिरते समय सूक्ष्म सांप्राय को वेदन करने वाले उसी के नानापन नहीं है। उसी के कार से क्या है, लोभ सहित चढ़ने वाले। यह सूत्र गतार्थ है, मैंने पहले ही उसका अर्थ बताया है। आगे का सूत्र, पढ़म समय बादर सांप्राय पहुड़ी नानत्तम वत्त इच्छामु। अब बादर सांप्राय के, बादर सांप्राय का अर्थ होता है अनिवृत्तिकरण गुणस्था, नोवा गुणस्था। प्रथम समय से लेकर नानापन को बतलाते हैं। जो बादर सांप्राय में प्रविष्ट हुआ है यानी अनिवृत्तिकरण, ये उसका नाम है। बादर है ना, ये लोग बादर लोग है और दसवें में सूक्ष्म लोग। जो बादर सांप्राय में प्रविष्ट हुआ है उसके प्रथम समय से लेकर नानापन है, उसे इस समय बतलाते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य, यानी दसवें गुणस्थान में कोई डिफरेंस नहीं था, अब जाके नौवे में प्रवेश करने पर होगा। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। तिविहस्स लोहस्स गुणसेढ़ी निक्षेवो इदरेहिम कम्मेहिम सरिसो। उसके तीन प्रकार के लोभों का गुणश्रेणी निक्षेप इतर कर्मों के समान है। इतर यानी ज्ञानावरणादि अन्य कर्मों की जो गुणश्रेणी यहाँ बनी है, जितनी अनिवृत्ति अपूर्वकरण प्लस है कावली, उतनी इसकी भी बनेगी। अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करने के अनंतर समय से ही यह जीव तीन प्रकार के लोभों का अपकर्षण करके गुणश्रेणी निक्षेप को करता हुआ इतर ज्ञानावरणादि कर्मों के सदृश आयाम वाले गुणश्रेणी निक्षेप को करता है। अब यहाँ पर भी ये उदयादि होगी, गलित शेष होगी, कहेंगे अभी। इस प्रकार यह नानापन यहाँ पर जानना चाहिए, क्योंकि अब ये रूल बता रहे, जिस कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़ता है उसका अपकर्षण कर ज्ञानावरणादि कर्मों के समान गुणश्रेणी निक्षेप पूर्वक अंतर को भरता है, ऐसा नियम देखा जाता है। हल में आई बात, जिस कषाय के उदय से चढ़ता है उस कषाय का उदय होने पर उतरते समय गुणश्रेणी निक्षेप ज्ञानावरणादि के समान होकर अंतर को पूर देता है। यानी मात्र गुणश्रेणी से अंतर पूरा नहीं होता है, उसके ऊपर भी कुछ गैप है, वो भी वहां भी प्रदेश पुंज दिया जाता। लोभम वेदे मानो शेषे कषाय उपकटी दी। वह लोभ का वेदन करता हुआ शेष कषायों का अपकर्षण करता है। क्रोध के उदय से चढ़ता है तो अपने अपने पहले लोभ का उदय आया था, फिर माया का, फिर मान का, फिर क्रोध का। इसके तो लोभ का ही थ्रू आउट उदय चलेगा और अपने अपने समय पर अन्य अन्य कषायों का भी वहाँ वो अनुपशांत तो होगी, उपशमित से उनका आकर्षण करके उनकी भी गुणश्रेणी बनेगी। यह सूत्र सुगम है। वहाँ नए निषेक तैयार है, फिर भी वो द्रव्य असंख्यात वे भाग प्रमाण है, क्योंकि नीचे गुणश्रेणी के शीर्ष में बहुत ज्यादा दिया है और ऊपर के जो अंतर के निषेक हमने पहले दिया था, देखा था, दिया हुआ द्रव्य गुणश्रेणी के शीर्ष तक, टॉप तक, असंख्यात गुना असंख्यात गुना, गुणश्रेणी के शीर्ष में टॉप मोस्ट में जितना दिया, उसके ऊपर जो अंतर वाला जो पहला निषेक है उसमें असंख्यात गुना हीन दिया और फिर ऊपर विशेषहीन विशेषहीन दिया। फिर जो ओरिजिनल निषेक थे, द्वितीय स्थिति का पहला निषेक, उसमें तो ऑलरेडी निषेक थे ही थे, उसके साइड से दिया तो फिर भी वहाँ पर भी असंख्यात गुणाहीन होकर दिया, फिर विशेषहीन विशेषहीन। ये कहाँ कितना देता है उसकी बात हमने पढ़ी थी पहले। आगे देखेंगे, यह सूत्र सुगम है। आगे का सूत्र, गुणश्रेणी निक्षेवो इदरेहिम कम्मेहिम गुणश्रेणी निक्षेवेन सव्येसिम कम्मानम सरिसो शेषे शेषे च निक्षिवदि। उसके सब कर्मों का गुणश्रेणी निक्षेप इतर कर्मों के गुणश्रेणी निक्षेप के सदृश होता है तथा वह शेष शेष में निक्षेप करता है, यानी यह गलित अवशेष है। यह सूत्र भी सुगम है। एदानी नानत्तानी जो कोहेन उसामेदुम उठादि तेन सह सन्निकासिज्यमानानि, जो क्रोध के उदय के साथ श्रेणी पर चढ़कर कषायों को उपशमन के लिए उद्यत हुआ है उसके साथ सन्निकर्ष करते हुए ये नानापन जानना चाहिए। सन्निकर्ष करना यानी उसके साथ कंपैरिजन करते हुए, अभी सन्निकर्ष का एग्जैक्ट रश कंपैरिजन नहीं होता है, उसके साथ मिलान करना, एक साथ उसको अगर हाँ यहाँ उसका अर्थ है कंपैरिजन हो जाता है, पर कहीं कहीं सन्निकर्ष का अर्थ है एक ऐसा है तो दूसरा उस समय उसकी क्या पोजीशन होगी, वहाँ उसको सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष का वैसा अर्थ होता है निकटता, साथ साथ उसके साथ सन्निकर्ष करना ने भी उसके साथ उसकी कंपैरिजन करना, ये नानापन जानना चाहिए। ये सभी जो जीव है क्रोधमान माया लोभ वाले हैं वो पुरुष वेद से चढ़ने वाले की बात है। जो पुरुष क्रोध संज्वलन के उदय से श्रेणी पर चढ़कर कषायों को उपशमाने के लिए उपस्थित हुआ है उसके साथ सन्निकर्ष अर्थात मिलान करके, लिखा नहीं मिलान करना कंपेयर कर, मान माया और लोभ के उदय वाले उपशामकों के जो नानापन प्राप्त होता है उसकी प्ररूपणा की, यह उक्त कथन का तात्पर्य। यानी अभी हर एक के साथ कंपैरिजन यहाँ समाप्त हुई, ये चार संज्वलनों की बात यहाँ हो। विशेषार्थ, एक जीव क्रोध कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़ता है और उतरता है और दूसरा जीव मान कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़ता और उतरता है, तो उन दोनों की प्ररूपणा में जो भेद हो जाता है वह तो यहाँ बतलाया ही है। इसी प्रकार शेष दो कषायों की अपेक्षा भी प्ररूपणा में क्या भेद पड़ता है यह भी यहाँ पर बतलाया गया है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। ये क्रोध मान माया और लोभ की बात हो गई। अब आगे देखते हैं। एदे पुरुष वेदेन उवर्थिदस्य वियप्पा, पुरुष वेद के साथ जो जीव श्रेणी पर चढ़ा है उसे माध्यम बनाकर ये विकल्प जानने चाहिए। यह विकल्प का अर्थ क्या करना है बोलो तेजल। हाँ, विकल्प का अर्थ क्या है बोलो नितिन। ये भेद भेद कितने विकल्प है, कितने कितने ऑप्शंस है। एक क्रोध के कोई पुरुष वेद को फिक्स रखा, कोई क्रोध से चढ़ता है, कोई मान से, कोई माया से, कोई लोभ से, ये चार अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ विकल्प का अर्थ होता है ये भेद जानने चाहिए, चार भेद जानने चाहिए। विकल्प हमेशा वो राग वाला विकल्प नहीं समझना, ये कितनी बार बात होगी ना, विकल्प के अनेक अर्थ होते हैं। पुरुष वेद के उदय को ध्रुव करने के साथ, यानी उसको तो फिक्स रखा है, वेदों की बात अब बाद में बताएंगे। पुरुष वेद और एक कषाय, इसके साथ जीव अनिवृत्तिकरण में आता है उसी के साथ वो अंतर भी करता है। तो यहाँ पुरुष वेद को फिक्स रखा, ध्रुव रखा, उसको ध्रुव करने के साथ चार संज्वलनों के उदय भेद का आश्रय करके, ये उदय भेद का आश्रय किया क्योंकि उपशमने का कार्य तो सब में समान हुआ, जिस पॉइंट पर जाओ कषाय जहाँ उपशमित होनी है वही तो उपशमित होती थी, डिफरेंस कहाँ उसके उदय में रहा, बंद भी जहाँ जितना होना था उतना ही हो रहा है, इसलिए नानापना उदय की अपेक्षा रहा, किसके उदय के होते हुए ये सब कार्य हुआ है ये बात यहाँ चलेगी, कहाँ कितनी प्रथम स्थिति बनी तो उदय की अपेक्षा से बनती है। तो उदय भेद का आश्रय कर पूर्वोक्त नाना विकल्पों का, इन्हें नाना प्रकारों का, नाना भेदों का विचार किया। अब शेष वेदों के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के जो भेद संभव है, अब श्रीवेद में भी ऐसे चार प्रकार लगाएंगे। पहले में पहले संज्वलन की बात थी तो कहा था कि नपुंसक वेद श्रीवेद पुरुष वेद में तो कोई डिफरेंस नहीं उसके लिए, क्योंकि पुरुष वेद हमने कायम रखा था उदय के लिए। अब कोई स्त्री वेद के उदय से ही चलेगा, उसको वेद को उपशमाने के क्रम में भी कोई चेंज रहेगा वो यहाँ बताएंगे। तो कहते शेष वेदों के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के जो भेद संभव है उनका वर्णन करेंगे, यही सूत्र का भावार्थ है। शेष वेद कौन से रह गए? हाँ, त्रिवेद और नपुंसक। इतिवेदन उवर्थिदस नानत्तम वत्त इत्ताम तम जहा, वो एक ही सूत्र बना है दोनों का। अब स्त्री वेद के उदय से उपशम श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के नानापन को बतलावेंगे वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। क्या डिफरेंस है वो अब बताएंगे। अवेदो सत्तकम्मम से उवसामेदि सत्तन्नम पिय उवसामनद्धा तुल्ला, यह जीव अवेदी होकर, अवेदी कहो अपगत वेदी कहो, यानी स्त्री वेद का उदय मिट गया, अवेदी होकर सात कर्मों को एक साथ उपशमाता है। उसके सातों ही कर्मों का उपशमना काल समान है। सात कौन कौन से नितिन भय कर्म? आयु को छोड़कर सात। बहुत अच्छा, आप क्या कहेंगी? ज्ञानावरणा को उपशमता है, केवल ज्ञान प्राप्त करता है, क्या करता है? तो वेदों के उपशमने के बाद वेदों का उपशमना चल रहा है, पहले नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर सात कर्मों को उपशमाता है। कौन से कर्म है मयंक भाई? हाँ, ये नौ कषाय, दो वेद छोड़कर पुरुष वेद और छह नौ कषाय की बात है यहाँ पर, क्योंकि उपशमने का कार्य अन्य कर्मों में हो रहा है क्या? वो अप्रशस्त उपशमना की बात नहीं यहाँ पर। हाँ, तो ये कर्णों की उपशमना की बात चल रही है। तो सातों का अर्थ क्या हुआ? सात नौ कषाय। तो उनका काल समान है। ये समान है कहने का आवश्यकता इसलिए है, पुरुष वेद से जो चढ़ेगा वो सात को उपशमाने का कार्य तो एक साथ करेगा, परंतु छह नौ कषाय पहले उपशमित हो जाएंगे। हाँ, फिर पुरुष वेद का उदय बाद में, वो क्योंकि उसका नवक बंध भी रहता है और उसका उपशमने का कार्य बाद में हो जाएगा, इसलिए इतना डिफरेंस है। अब देखेंगे, पहले का जीव अर्थात पुरुष वेदी जीव सवेदी होकर सात कर्मों को उपशमाता है, यानी उसके पुरुष वेद के उदय के रहते हुए सातों का ही उपशमाने का कार्य चलता है, तथा छह नौकषायों के उपशमना काल की अपेक्षा उसका पुरुष वेद संबंधी उपशमना काल एक समय कम दो आवली नवक बंद उपशमना काल प्रमाण विशेष अधिक होता है। यानी जब तक पुरुष वेद का उदय चल रहा है तब तक छह नौकषाय तो पूरे उपशमित हो जाते हैं, पुरुष वेद भी जो पुराना बंधा हुआ वो भी पूरा उपशमित हो रह जाता है। अब यहाँ पर जो नए बंधे गए, क्यों पहले पहले अभी अभी आवली या दो आवली पहले बंधे, एक तो आवली के बाद यानी बंधावली में तो कुछ नहीं होता कार्य, उसके बाद उपशमने का कार्य के लिए भी एक आवली लगेगी, एक समय प्रबंध को उपशमने के लिए एक आवली लगेगी, क्योंकि एक फाली दूसरी फाली तीसरी फाली समय प्रबंध ऐसा बांधा है। ये पुरुष वेद का काव्य हमने, ये दो अवली, उसके चार समय लिखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये दो अवली में बंधे हुए का क्या क्या होता है उसको देखेंगे। ये आठवें समय में ऊपर से उल्टे क्रम से आठवां समय लिया, यानी दो अवली वाला समय, यहाँ जो समय प्रबद्ध बांधा, तो जब तक ये आवली नहीं बीत जाएगी इसकी 1 2 3 4 तब तक उसमें कुछ नहीं होगा। अब ये ऊपर के चार समय है एक आवली के हमने मान लिए हैं, उसमें इसका उपशमाने का एक दो तीन चार समय में पूरा हो गया, यानी इस समय ऊपर से आठवें समय में बंधे हुए का उपशमने का कार्य पूरा हो गया। अब ये सातवें समय पर जो बंधा था उसका भी एक दो तीन चार के बाद यहाँ उपशमने का कार्य चालू हुआ, परंतु वो तीन समय तक ही उपशमाया। वहां का जो समय प्रबद्ध था उसके चार फाली करेंगे हम, इसको उपशमाया उसको उपशमाया उसको, एक फाली बाकी रही नवक बंधे की बात। पहले वाले सारे यहीं पर उपशमित हो गए। ये पुरुष वेद के उदय का अंतिम समय है। पहले जो सत्ता में थे वो तो सारे उपशमित हो गए, परंतु अभी ये जो ऊपर से दो आवली प्रमाण काल में जो बंधा था वो तो वो भी उपशमित हुआ। अभी एक समय कम दो आवली वाला लिया, इन्हें ऊपर से सातवा लिया हमने। ऊपर से सातवें समय में जो बंधा था उसकी बंधावली बीत गई और उसके आवली में एक समय कम है, एक फाली उसकी बाकी है, इसकी एक फाली बाकी रही। अभी इसके दो फालियां बाकी है, इसकी तीन फालियां बाकी है, इसकी चारों फालियां बाकी है, सब पूरा समय प्रबंध है। ऊपर के भी सब पूरा का पूरा समय प्रबंध बाकी है, एक समय और बीत जाएगा। तो ये तो पूरा उपशमित हुआ, ये इसके एक दो तीन फिर ये चार 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 रह गए और एक समय बीत गया, ये भी चला गया, फिर एक दो तीन चार चार रह गए और एक समय बीत गया, ये एक दो इस तरह से करते जाना। तो एक समय कम दो आवली में सभी के सभी पूर्ण उपशमित हो जाए। ये पुरुष वेद सही चढ़ने वाले में ही होता है, स्त्री वेद में चढ़ने वाले के पुरुष वेद का नवक समय प्रबद्ध है कि नहीं है? स्त्री वेद में भी चढ़ रहा था, यहाँ तो स्त्री वेद का यहाँ तक उदय था और वहां तक उसने पुरुष वेद बांधा था, स्त्री वेद का तो बंधन नहीं है, क्यों नहीं है? कब स्त्री वेद का यहाँ बंध क्यों नहीं है? वो तो उदय की बात चल रही, अपगत वेदी उदय में लगता है। जब श्रीवेद का उदय चल रहा था तब बंध किसका हो रहा था? पुरुष वेद। क्यों? नौवा है तो कहाँ होती उसकी बंध विच्छेदी श्रीवेद की? दूसरे सेकंड में, सेकंड में। बहुत अच्छा, हम यही याद दिलाने चाहते हैं। पहले थोड़ा 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 लेट हो गया। श्री वेद कहाँ कब तक बनता है, कौन से गुणस्थान तक? तो वहां बंधे की विच्छित हुई। अब उदय भले नवे तक है, फिर भी श्री वेद का उदय जब तक है तब तक बंध किसका करेगा? वो पुरुष वेद का ही करेगा, क्योंकि अभी तो नवे गुणस्थान की बात है। तो मेरा प्रश्न है, पुरुष वेद के उदय से ही चढ़ता था तो लास्ट लास्ट में बंधे हुए जो नवक बंध है उसका उपशम बाद में करता था। श्रीवेद के उदय से चढ़ने वाला जब तक श्रीवेद का उदय तब तक उसने भी पुरुष वेद का बंध तो किया था, तो उसमें नवक बंध होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो छह नौ कषाय और पुरुष वेद को उपशमाने का कार्य उसका एक साथ पूरा होता। क्यों? इसका जो उदय काल है वो छोटा है, पुरुष वेद का उदय काल बड़ा है। तो पुरुष वेद का उदय काल बड़ा है तो उसमें छह नौ कषाय का तो पूर्ण हो जाता है और पुरुष वेद का जो नया नया बंधा हुआ वह बाद में उपशम करता है। ये बात आएगी अभी आगे। इतना ही समझना है, स्त्री वेद से जो चल रहा है उसको भी बंध तो पुरुष वेद का ही हो रहा है, परंतु पुरुष वेद से चढ़े हुए का जो उदय काल है वो लंबा है। अन्य छह का तो पहले उपशम पूरा हो जाता है, पुरुष वेद का नवक बंध उपशमित होने से अभी बाकी है, वो एक समय कम दो आवली में पूरा उपशमित होगा। यही पढ़ा अभी हमें, देखो फिर से पढ़ते 272 पॉइंट। पहले का जीव अर्थात पुरुष वेदी जीव सवेदी होकर सात कर्मों को उपशमाता है। ये बात ख्याल में आई? सवेदी होकर सात कर्मों को उपशमाता है ना। पुरुष वेद वाले ने क्या किया? पहले नपुसक वेद को उपशमाया, फिर स्त्री वेद को उपशमाया, और फिर यहाँ से ही लेकर, और पुरुष वेद का उदय तो यहाँ तक चलेगा, यहीं से लेकर उसने पुरुष वेद और छह अनुकर्षण को भी उपसमाया, यहाँ पूरा हो गया उसका। फिर भी यहाँ जो बंदे हैं नए नए वो बाद में उपसमाए, क्योंकि ये स्त्रीवेद को उपसमाने का काल बहुत पहले ही निकल गया है, उसका उदय का काल भी छोटा है। तथा सेकंड लाइन, छह नौकशांग के उपशामना काल की अपेक्षा उसका पुरुष वेद संबंधी उपशामना काल एक समय कम दो आवली नवक बंद उपशामना काल प्रमाण विशेष अधिक होता है। अभी इसका अर्थ समझ में आए, पुरुष वेद से चढ़ता है उसको समय कम दो आवली काल तक नवक बंधों का उपशमने का कार्य चलता रहता है। किंतु यहाँ पर यानी स्त्री वेद की बात, स्त्री वेद की प्रथम स्थिति को गलाकर तदनंतर समय में अपगत वेद भाव को प्राप्त होकर, यानी स्त्री वेद के उदय से ही चढ़ा था तो उसने स्त्री वेद की प्रथम स्थिति बनाई थी, स्त्री वेद के उपशमने के काल में वो प्रथम स्थिति गल गई, अपगत वेदी हो गया। तदनंतर समय में अपगत वेद को प्राप्त होकर तथा वहीं पर पुरुष वेद का अबंधक होकर, पुरुष वेदी जीव सात नौकशाएं के उपशमना काल में सवेद वाला है इसलिए उसका बंध भी है, और स्त्री वेद वाला जीव स्त्री अपगत होने के पश्चात सात नौकशाएं की उपशमना शुरू करता है, इसलिए वहां वेद बंधने का कोई सवाल नहीं है। तथा वहीं पर पुरुष, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ नपुंसक वेद वाले का तो हम उसकी बात करेंगे फिर। वहीं पर पुरुष वेद का अबंधक होकर जब स्त्री वेद से ही चढ़ने वाला जीव अपगत वेदी होता है, जब तक वेद का उदय तब तक वेद का बंध होगा, ये नियम। वेद का उदय मिट गया, बोले स्त्री वेद हो पुरुष वेद हो नपुंसक, जिस वेद से चढ़ा है उसका उदय मिट गया तो वहां नया बंध नहीं होगा वेद का। तो कहते हैं पुरुष वेद का अबंधक होकर ये स्त्री वेद वाला जी तत्पश्चात सात नौकशांग को अंतर मुहूर्त मुसूर्त हुआ, मुहूर्त काल के द्वारा किया करेक्शन, एक साथ ही उपशमाते हैं। इस प्रकार यह नानापन इस सूत्र द्वारा सूचित किया गया है, शेष कथन सुगम। विशेषार्थ, पुरुष वेदी जीव सवेद भाग में ही सात नौकशाएं की उपशमना करता है, यानी पुरुष वेद से जो चढ़ता है वो भी जीव पहले नपुंसक वेद की उपशमना पूर्ण करेगा, सत्ता में पड़े ना ये, फिर स्त्री वेद की उपशमना पूर्ण करेगा और यहीं से लेकर वो सात नौकशाएं की उपशमना चालू करेगा। यानी सात नौकशाएं की उपशमना का स्टार्टिंग पॉइंट तो सबके लिए समान है, फिर भी इसके बंध नहीं हो रहा है नया, और पुरुष वेदी के नया बंध चल रहा है क्योंकि वो अभी अपगत वेदी नहीं हुआ, एक अंतर्मूर्त जाकर वो अपगत वेदी होना वाला। यानी पुरुष वेद से चढ़ने वाले का उदय काल एक अंतर्मूर्त ज्यादा है। ये विशेषार्थ पढ़ा क्या हमने? देखो, पुरुष वेदी जीव सवेद भाग में ही सात नौकशाएं की उपशमना करता है, किंतु स्त्री वेदी जीव अवेदी होने के बाद सात नौकशाएं की उपशमना करता है, यह अंतर यहाँ जानना चाहिए। अब आगे, एदम नानत्तम सेसा सव्वे वियप्पा पुरुष वेदेन सह सरिसा, यानी इसके बाद वाले जो क्रोध मान माया लोग जो कुछ से चढ़ता है वो सब उसके समान है पुरुष वेद, यहीं पर वेद के उपशमने में उसका अंतर है। प्रकृत में यह नानापन है, शेष सब विकल्प यानी भेद, श्री वेद से चढ़ने वाले में क्या क्या भेद हो गए, नानापन नहीं पूछ रही हूँ, भेद क्या क्या हो गए स्त्री वेद से चढ़ने वाले के, नहीं ये तो नानापन हुआ, डिफरेंस हुआ, स्त्री वेद से चढ़ने वाले के भेद पूछ रही हूँ मैं, कोई क्रोध से चढ़ेगा, कोई मान से, कोई माया से, कोई लोग थे, वो आगे चलकर भेद सब क्रोध में पुरुष वेद के समान जो कुछ बताए थे उसमें कोई डिफरेंस नहीं, उसमें क्रोध मान माया लोभ में जो डिफरेंस पहले देखा था वो तो है। यहाँ इतना ही विशेष है, उक्त विकल्प से ऊपर के सभी विकल्प, उक्त विकल्प है वेद वाला विकल्प, वेद वाला डिफरेंस, और ऊपर के सभी विकल्प है ऊपर के सभी भेद कहो, जिस प्रकार पुरुष वेदी के चार कषायों के साथ कहे हैं उसी प्रकार विशेषता किए बिना कहने चाहिए, यानी विदाउट एनी डिफरेंस। जैसे पुरुष वेदी के चार कषायों के कारण जो डिफरेंस था वैसे ही स्त्री वेदी के संगलन चार के बारे में वैसे ही प्रकार हो गए। इस प्रकार यहाँ पर इस सूत्र संबंधी अर्थ का निर्णय है। यहाँ पर उतरने रूप अवस्था में थोड़ा सा विशेष संभव है सो उसे जानकर कहना चाहिए। तात्पर्य यह है, यह जीव श्रेणी से उतरते समय अवेदी रहकर ही सात नौ कषायों को अनुपशमित करता है। स्त्री वेद से जो चढ़ा है उसकी बात कर रही है। इतना मात्र यहाँ भेद है। अब नपुसक वेद के उदय के साथ, यानी जो पुरुष वेद के साथ चढ़ता है वो सात नौ कषायों का एक ही समय में उसका अनुपशांत करता है, उसके जो कुछ वहाँ गुण श्रेणी हुए सब कुछ बनेगा और उसका उदय भी चालू हो जाता है पुरुष वेद का। इस जीव के आवली के ऊपर, आवली अभी क्या, अभी चढ़ने की बात नहीं चल रही, उतरने की बात चल रही, गली से शेष यहाँ पर सब कर्मों के समान हो जाएगी। यानी यहाँ ना छह नौ कषायों का उदय है, स्त्री वेद से चढ़ता है, उदयावली के ऊपर इसके गुणश्रेणी बनेंगे। चढ़ते समय जो अनुदय रूप है उसके आवली प्रमाण प्रसंग स्थिति होती है, उतरते समय आवली छोड़कर ऊपर होती है। नहीं, वो क्रम से नीचे आएंगे। गुणश्रेणी आवली के ऊपर होगी, परंतु जब देखो यदि पहले ही समय से उदय के उदयावली में प्रवेश करेंगे तो उसको उदीर्णा कहेंगे, और उदीर्णा उदय के बिना होती नहीं है। वो जो उदयावली में वो क्रम से एक एक समय गलेगा गुणश्रेणी का, तभी वो उदय के समय से वो दिखाई देगी। नहीं समझे? पहला समय जब रचना का है तब आवली छोड़कर ऊपर से होगी, अब वो एक एक समय जैसे पास होगा वैसे वो उदयावली में एक एक निषेक प्रवेश करेगा। उदयावली में क्रम से प्रवेश करना अलग बात है, और डायरेक्ट अगर हम कहेंगे उपकर्षण होकर उदयावली से दिया, भले आप गुण श्रेणी से नहीं दो परंतु इस रूप से अगर दिया कहेंगे तो उदयावली में कौन सा दिया जाता है, जो उदय रूप है उसको उदीर्णा कहेंगे। फिर हम उदीर्णा तो उदय बिना होती नहीं, हाँ आवली के ऊपर हो जाएगी, आवली छोड़कर ऊपर उसकी रचना हो जाएगी। और ये गलितावशेष है, ये निषेक एक एक क्रम से उदयावली में प्रवेश करेगा, आवली के बाद उदय के समय से दिखाई देगा। कषाय में क्योंकि उसके उदय की बात है तब ठीक, अब इसका जिसका उदय है नहीं, उदय होने वाला तो उदय उदयावली के ऊपर से ही होगा। जब श्रीवेद का उदय होगा तो उदय के समय से होगा। अब उसके बारे में कुछ होगी तो आगे देखेंगे हम उसके गुण श्रेणी के बारे में। अभी उसके गुण श्रेणी की अभी बात आई नहीं उनकी, फिर भी उदय के समय से तो रचना होगी ही नहीं तो उसको उदीर्णा कहना पड़ेगा। उदयावली में कुछ नहीं दिया जाता, जिसका उदय है उसी का उदयावली के यानी पहले समय से लेकर उसी समय उदय भी शुरू हो जाता है, उसी समय वहां से रचना भी होती है। बाकी निशे क्रम से आएगी नीचे 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 उदयावली में, परंतु आवली काल में आएंगे। जब पहले समय में दिया जाता है तो उदयावली में नहीं दिया जाता। अब नपुसक वेद की बात करेंगे कि नपुसक वेद के उदय के साथ श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के नानापन को दिखलाने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। श्री वेद की बात ख्याल में आई ना, अभी नपुसक वेद के और कुछ विशेषता है उसको बताएंगे। नौ से वेदे नोवर्थिदस्स उसामगस्स नानत्तम वत्त इस्तामो। नपुसक वेद के साथ श्रेणी पर चढ़े हुए उपशामक के नानापन को बतलाते हैं, यह सूत्र सुगम है। तम जहा वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब आगे वाला जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे। अंतरदु समय कदे नौ से वेदम उवसामेदी जा पुरुष वेदन उवर्थिदस्स नौसम वेदस्स उवसामनद्धा तद्देही अद्धा गदा न ताव नौ से वेदम उवसामेदी तदो इत्थि वेदम उवसामेदी नौ से वेदम थी उवसामेदे चेव तदो इत्थि वेदस्स उवसामनद्धाय पुन्नाय इत्थि वेदोच नौ से वेदोच उवसामिदा चाहिए, वह रह गया है। उसामिदा लक्ष्मी उवसामिदा भवंती, देख लो पहले पीछे 119 पृष्ठ 381 पर 5 नंबर। उवसामिदा भवती भवंती है, वो वहाँ वो अनुस्वार थोड़ा अस्पष्ट है। मिला 381 पर तीसरा वो पैराग्राफ चौथी लाइन इत्थि वेदो से नौ से वेदो से वो सामिदा भवंती, वो डालना है। साधे चेव चरिम समय सवेदो भवति तदो अवेदो सत्त कम्माणि उवसामेदि तुल्ला च सत्तन्नम की कम्माणम उवसामणा। अब ये जो वेदों की बात है ना वो अटपटी है थोड़ी, पहले हम समझेंगे पाटी पर और फिर इसको पढ़ेंगे। हमने वैसे सूत्र में तो पढ़ लिया है परंतु पहली बार वो सुनते हैं पढ़ते हैं तो उसका कुछ अर्थ भाषित नहीं होता। हमारे पास तीन अलग अलग जीव है, जो पुरुष वेद से चढ़ता है तो ये पुरुष वेद से चढ़ने वाला जीव है। अभी ये क्या क्या करता है तो पहले नपुसक वेद को उपशमाता है, ये उसका नपुसक वेद का उपशमाने का काल, या उसने नपुसक वेद को उपशमाया पुरुष वेदी जीव, फिर वो स्त्री वेद को उपशमाता है और फिर पुरुष वेद और सेनोकश है वो सबको उपशमाता है। अभी इसका जो काल बड़ा है वो तो हमने देख लिया, उसकी बात अभी नहीं करनी है। अब जो स्त्री वेद से ही श्रेणी चढ़ता है वो क्या करता है, वो भी नपुसक वेद को पहले उपशमाता है, नपुसक वेद का ही उपशमना काल, फिर वो स्त्री वेद को उपशमाता है, फिर अपगत वेदी होकर सात नौकशाओं का एक साथ उपशमाता है। यानी इसका ये बाद में थोड़ा सा काल चलेगा नवक बंद की अपेक्षा, यहाँ पर छह नौकशाय उसके पूरा है। अब इसके सातों के साथ यहाँ पर पूरे हो जाते हैं उपशमाने। अब नपुसक वेद को उपशमाने का जो है, ये नपुसक वेद वाला, वो भी नपुसक वेद को उपशमाने का शुरू करता है, परंतु यहाँ पर उसका नपुसक वेद का उपशमाने का कार्य पूरा नहीं होता। अब वो साथ साथ त्रिवेद को भी उपशमाएगा और नपुसक वेद को भी उपशमाएगा। दोनों को उपशमाएगा, नपुसक वेद की कर, परंतु नपुसक वेद का उपशमाने का काल नपुसक वेद और त्रिवेद का मिलकर जितना काल है, तब तक वो उस नपुसक वेद को ही उपशमाता रहेगा और आधे में जाकर त्रिवेद का भी उपशमाने का कार्य साथ साथ चलेगा। यानी शुरू में अकेले नपुसक वेद को उपशमाता था, फिर त्रिवेद नपुसक वेद दोनों को उपशमाता है, और जब ये अपगत वेदी हो जाता है तब जैसे त्रिवेदी ने यहाँ पर अन्य सातों को एक साथ किया, तो इसने भी सातों को एक साथ किया। ये डिफरेंस है तीनों में। अपगत वेद में ही करता है, त्रिवेदी हो या नपुसक वेदी है, अपगत वेदी होकर सात नौ कषायों को एक साथ समान उसका काल है, सातों का समान काल है। पुरुष वेद से चढ़ने वाले का ये जो पुरुष वेद के नवक बंध है, वो थोड़े काल एक आवली कम, एक समय कम दो आवली में वो क्षमाने का कार्य चलता रहता है, इसलिए उसको आगे तक यहाँ पूछ सकते हैं। दोनों के बराबर, कहीं कहीं इसका एक समय ज्यादा भी बताया, नपुसक वेद का एक समय ज्यादा बताया, एक समय बाद में उसका, अभी वो बात कहीं आती है तो देखेंगे। मुख्य डिफरेंस या एक समय की बात हम बाद में देखेंगे जहाँ कहीं आएगी, यहाँ तो ये बातें तीन अलग अलग होती हैं। तीन अलग अलग लेवल पर उनका कार्य होता है। अब आगे ये हमने केवल सूत्र पढ़ा ना अभी, और वो भी प्राकृत पढ़ा कि हिंदी पढ़ा? हाँ हिंदी पढ़ेंगे। अंतर करने के बाद दूसरे समय में नपुसक वेद को उपसमाता है, यानी जहाँ अंतर को करने का चढ़ने की बात चल रही है, अंतर करने का कार्य पूरा हुआ, दूसरे समय से ही नपुसक वेद को उपशमाने का कार्य चालू हो जाएगा। वहाँ बहुत सारे वो सात करण होते हैं, हमने देखे थे अलग अलग, अनुपूर्वी संक्रमण है, ये है, वो है, वो बात। अब यहाँ तो उपशम की बात करेंगे। जो पुरुष वेद के सात श्रेणी पर चढ़े हुए जीव का उपशामना काल है, उतने आयाम वाला उपशामना काल जब तक व्यतीत नहीं होता, तब तक नपुसक वेद को नहीं उपशमाता है, नहीं यानी उपशमने का कार्य पूरा नहीं होता है। तत्पश्चात त्रिवेद को उपशमाता है, नपुसक वेद को भी उपशमाता ही है, यानी उसका उपशमा नहीं उपशमाता अर्थ क्या, उपशमने का कार्य पूरा नहीं हुआ है, नहीं तो नहीं उपशमाता अर्थ उसका उल्टा मत लेना। यानी उपशमने का कार्य पूरा नहीं हुआ, बाद में भी वो त्रिवेद के उपशमने के साथ साथ इसकी भी अभी चल ही रही है। यहाँ लिखा ना, तत्पश्चात त्रिवेद को उपशमाता है, नपुसक वेद को भी उपशमाता ही है, इसलिए त्रिवेद के उपशमना काल के पूरा होने पर त्रिवेद और नपुसक वेद उपशमित हो जाते हैं, तथा उसी अंतिम समय में सवेदी होता है। अंतिम समय में सवेदी होते ना, पहले नहीं था वो, नहीं सवेद भाग का अंतिम समय है, नहीं तो एक ही वाक्य रचने का उलट सुलट अर्थ नहीं लेना। यानी यहाँ तो दोनों समान लिए, यहाँ उसके उपशमने का भी कार्य चलता है नपुसक वेद का, तब तक नपुसक वेद का ही उदय चल रहा है, तब तक उसका उदय चलेगा, एक ही पॉइंट में। तत्पश्चात अवेदी होकर सात कर्मों को उपशमाता है, जहाँ त्रिवेदी वाले ने किया था, इन दोनों का उपशमाने का एक साथ पूरा हो गया। उसके बाद ये अवगत वेदी हुआ, अभी सातों को एक साथ उपशमित करेगा, सातों का काल समान। पुरुष वेदी के लिए वो नवक बंध की अपेक्षा एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, उसका वेदक काल भी अंतर्मुर्ध ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों को उपशमाने के बाद भी उसका उदय भी चलता है और सात नौ कसन का उपशमने का कार्य भी साथ साथ चलता है। यानी अंतिम समय तक उसकी उपशमना पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसका बंध भी चल रहा है और पुरुष वेद का बंध है, उसका काल भी, उदय का काल भी ज्यादा है। इसका अपना उदय मिटने के बाद अपगत वेदी होकर सात नौकशाएं की उपशमना करता है और पुरुष वेद के उदय होते हुए सातों की उपशमना चलती है। उसका उदय है इसलिए उसका बंध भी लंबे काल तक चलता है। तत्पश्चात अवेदी होकर सात कर्मों को उपशमाता है। ये कौन से सात कर्मों को उपशमाता है नितिन भाई? अभी दुरुस्त आ गया। सात कर्मों का उपशमना का समान है। मैं बहुत बार बोलती कि करनाम योग में कॉमन सेंस के अलावा और कुछ नहीं है। अन्य सात कर्मों को बोलो बोलो। वो हमेशा बोलते हैं देखो, पुरुष वेद के साथ श्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव, अभी इसका स्पष्टीकरण करें। पहले ही नपुंसक वेद को उपशमा कर तत्पश्चात अंतर्मुर्त काल द्वारा स्त्री वेद को उपशमाता है, परंतु यह ने नपुंसक वेदी जीव अंतर किए जाने को मर्यादा करके नपुंसक वेद और स्त्री वेद को उपशमना काल प्रमाण, वेद के उपशमना काल प्रमाण नपुंसक वेद की प्रथम स्थिति को स्थापित करता है। इसकी पहली स्थिति भी कितनी बनती है? जो नपुंसक वेद को उपशमने का काल और स्त्री वेद को उपशमना का काल, इसको मिलकर जितनी उसकी प्रथम स्थिति बनाई थी, अंतर को मर्यादा करके नहीं, उसके ऊपर अंतर है। अभी ये तो हमने काल की अपेक्षा बताया, जब उसने अंतर किया था। अब वो क्रोध में किया था उसको भूल जाओ, अभी हम वेदों में देख रहे हैं। तो जिसका उदय होता है उसके अंतर्मूल प्रमाण पहली स्थिति बनेगी। तो नपुंसक वेद की प्रथम स्थिति कितनी बनेगी? तो स्त्री वेद का उपशमने का काल और नपुंसक वेद का उपशमने का काल मिलकर जितनी उतनी उसकी प्रथम स्थिति बनेगी। और ये क्रम से गलते गलते उसका उदय मिट जाएगा ना, तब तक उसका उपशमने का कार्य चल रहा है। कहाँ पर? द्वितीय स्थिति में। उपशमना नीचे नहीं हो रही, ये काल बता रहे हैं। इतने काल में द्वितीय स्थिति में स्थित जो परमाणु है, अंत कोड़ा कोड़ी के पड़े हैं, उसके उपशमना चलेगी। स्त्री वेद की तो यहाँ से हो जाएगी, हाँ उसकी, हाँ त्रिवेद के उदय से चढ़ता है, उसकी भी उतनी प्रथम स्थिति उसने बनाई थी उस जीव में। एक ही जो दोनों वेदों की स्थिति गुणश्रेणी ऐसी नहीं बनेगा, प्रथम स्थिति नहीं बनाएगा। चढ़ते समय जिसका उदय है उसकी पूरी प्रथम स्थिति बनती है और जिसका अनुदय है वो नीचे आवली प्रमाण होते हैं। उतरते समय क्या होता है? जिसको वो तो उदय के समय से लेकर होती है और जिसका नहीं है वो उदयावली की छोड़कर उसके ऊपर उल्टा फुल्टा होता है। हाँ वही तो तेजल ने पूछा, जो श्रीवेद से चढ़ता है, जो श्रीवेद की जितनी प्रथम स्थिति बनाएगा उतनी नपुंसक वेद से ही चढ़ने वाला नपुंसक वेद की बनाएगा और पुरुष वेद से ही चढ़ने वाला उससे ज्यादा बनाएगा, अंतर्मूल प्रमाण ज्यादा होगी क्योंकि उसका उदय काल ज्यादा है। देखो यहाँ पढ़ते हैं, नपुंसक की प्रथम स्थिति को स्थापित करता है। चौथी लाइन, जो प्रथम स्थिति है, जो पहले ही नपुंसक वेद की उपशामना का आरंभ कर उसकी उपशामना कर रहा है, ऐसे पुरुष वेद से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के जितना आयाम वाला नपुंसक वेद का उपशामना काल है उतना आयाम वाले काल के बराबर है। क्या वाक्य छूट गया? फिर ऊपर से देखते हैं, शुरू से। पुरुष वेद के साथ श्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव पहले ही नपुंसक वेद को उपशमा कर तत्पश्चात अंतर्मुहूर्त काल द्वारा स्त्री वेद को उपशमाता है, परंतु यह अर्थात नपुंसक वेदी जीव अंतर किए जाने को मर्यादा करके, यानी ऊपर अंतर छोड़कर नीचे नपुंसक वेद और स्त्री वेद के उपशमना काल प्रमाण नपुंसक वेद की प्रथम स्थिति को स्थापित करता है, जो प्रथम स्थिति कितने आयाम वाले काल के बराबर है वो बता रहे। ये प्रथम स्थिति, कॉमा लगा है ना, जो प्रथम स्थिति, अब ये कंपेयर कर रहे, जो पहले ही नपुंसक वेद की उपशामना का आरंभ कर उसकी उपशामना कर रहा है, ऐसे पुरुष वेदी वेद से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के जितना आयाम वाला नपुंसक वेद का उपशामना काल है उतना आयाम वाले काल के बराबर है। नहीं, ये देखो, वह काल यद्यपि व्यतीत हो गया है तो भी नपुंसक वेद की उपशामना समाप्त नहीं होती। ये वाक्य रचना अटपटी है, ऊपर प्राकृत में देखते हैं। सेकंड लाइन, वेदस्य पुनः अंतर कदम एत्ते चैव नहुंसे वेदस्य परम ठिदिम नहुंसे वेद इति वेदो वसामणम अमेत्तिम छवेयुन पूर्वमेव नहुंसे वेदो वसामण माढ़विय वसामे मानस जद्देहि पुरिष वेदन उवठिदस्य नहुंसे वेदो वसामणद्धा तद्देहि अद्धा गदा तो भी नव से वेदो को सामना न समपदी, यानी तब तक उसकी नपुंसक वेद की उपशमना पूरी नहीं होती। ये बीच में जो प्रथम स्थिति शब्द डालना है ना, वो नहीं चाहिए वहां पर। ये जो हमने देखा था ना, जो पुरुष वेद से चढ़ता है उसका नपुंसक वेद के उपशमना का काल समाप्त हुआ। अब नपुंसक वेद से चढ़ने वाले ने स्त्रीवेद और नपुंसक वेद के मिलकर उसने इतनी प्रथम स्थिति बनाई, उस प्रथम स्थिति में से उतना काल बीत गया वेद को उपशमने का, जो काल है पुरुष वेदी वाले के, उतना काल बीत गया फिर भी इसकी उपशमना पूरी नहीं हुई। ये बात होता है यहाँ, पता है ना, उसने इतनी मर्यादा करके प्रथम स्थिति को स्थापित किया, उस प्रथम स्थिति में से इतना काल व्यतीत हो गया तो भी, इस तरह से समझना। अभी इनकी वाक्य रचना छोड़ दिया, उसने, हाँ वो प्रथम स्थिति निकाल देना है, इसने इतनी प्रथम स्थिति बनाई जो नपुंसक वेद और स्त्री वेद के उपशमना के काल के बराबर है। यदि पुरुष वेदी होता तो इतने काल में नपुंसक वेद की उपशमना पूर्ण करता, परंतु इतना काल बीत गया प्रथम स्थिति में से गल गया है फिर भी इसकी उपशमना पूरी नहीं हुई, कंटिन्यू रही। इसने यहीं पर से स्त्री वेद की भी उपशमना प्रारंभ कर दी, साथ साथ दोनों की उपशमना चल रही है। ये बात बताना, देखो ऐसा करना, ये पेंसिल से करना, अभी उसमें ब्रैकेट करके बाद में उसको बाहर लिखी उसकी आवश्यकता। देखो यह अर्थात नपुंसक वेदी जीव सेकंड लाइन अंतर किए जाने को मर्यादा करके नपुंसक वेद और स्त्री वेद के उपशामना काल प्रमाण नपुंसक वेद की प्रथम स्थिति को स्थापित करता है। अब इसको यहाँ पर एक कॉमा ये ब्रैकेट कर दो, जो प्रथम स्थिति ब्रैकेट में डालो, हाँ ब्रैकेट में रखो अभी, तो बाद में हम देखेंगे क्या करना उसका। तो स्थिति को स्थापित करता है। अब जो पहले ही नपुंसक वेद की उपशामना का आरंभ कर उसकी उपशामना कर रहा है, ऐसे पुरुष वेद से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के जितना आयाम वाला नपुंसक वेद का उपशामना काल है, उतना आयाम वाले काल के बराबर काल है वह निकालो, यानी ब्रैकेट करो उसको। है और वह उतना आयाम वाले काल के बराबर काल यद्यपि व्यतीत हो गया है तो भी नपुंसक वेद की उपशामना समाप्त नहीं। अब ये ठीक लग रहा है, जो जो मैंने बताया है ऊपर क्या ब्रैकेट में डालना है, हाँ, और बाजू में उसको डिलीट करो, क्रॉस करो, कुछ ऐसे बाजू में लिख के रखो। तत्पश्चात वहाँ पर यानी नपुंसक वेद के तो चल ही रहे, समाप्त नहीं है, वहीं पर से स्त्रीवेद की उपशामना को भी आरंभ करके, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद दोनों की ही उपशामना करने वाले जीव के अपनी यानी स्त्रीवेद संबंधी प्रथम स्थिति के अंतिम समय में, जिसमें कि स्त्रीवेद का उपशामना काल पूर्ण होता है, उसमें नपुंसक वेद और स्त्रीवेद दोनों ही एक साथ उपशमित होते हैं। यहाँ रेगुलर स्त्रीवेद जहाँ उपशमित होता है, पूर्ण हो जाता है, वहीं पर इसके भी दोनों एक साथ पूर्ण होते हैं। यह एक नानापन है, ये एक डिफरेंस है। और अपगत वेदी, अवगत भी कहते हैं उसको, अपगत वेदी होकर वहाँ से लेकर सात नौ कशांक को उपशमाता है। पुरुष वेदी तो सवेदी ही था तभी सात नौ कशांक को उपशमा रहा था, यह अपगत वेदी होकर उपशमाता है। सात नौकशांक का उपशामना काल तो समान है, जितने काल में पुरुष वेदी ने सात नौकशांक को उपशमाया, अभी वो नवक बंद छोड़ो, उतने ही काल में ये नपुंसक वेदी ने भी सात को उपशमाया, वो काल समान है। यह दूसरा नानापन है। इस प्रकार नपुंसक वेद से श्रेणी पर चढ़कर उपशामना करने वाले के ये दो नानापन होते हैं। यह इस वो ई स के साथ जोड़ना और ह के साथ जुड़ा है उसको अलग करना। यह इस सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। अब इसी अर्थ का उपसंहार करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। ये बात ख्याल में आई वेदों की, ये नपुंसक वेद और स्त्री पुरुष वेद इसकी कंपेयर करें। पुरुष वेदी जीव ने जहाँ पर नपुंसक वेद का उपशम समाप्त कर दिया, वहाँ पर इसकी समाप्ति नहीं होती, फिर भी चल रहा है। पुरुष वेदी ने जहाँ से स्त्री वेद को उपशमाने का प्रारंभ किया, उस समय से लेकर यह भी प्रारंभ करता है, यानी वहाँ दोनों का उपशमने का कार्य एट ए टाइम चल रहा है। जहाँ स्त्री वेद का उपशमना समाप्त होती, वहाँ पर यह इसकी स्त्री वेद की भी अपनी भी यानी नपुंसक वेद की भी समाप्ति होती उपशमने के, उसी समय उसका उदय भी मिटता है। नया बंध तो पुरुष वेद का हुआ था और उसका उपशमना का काल तो चल ही रहा है आगे, सात नौ कशांक का यानी पुरुष वेद उसमें है भी, यानी वहां पर बंधे हुए तो उपशमित हो ही रहे, उसके तो अंतर्मूर्त है। लास्ट लास्ट में बंधे हुए तो एक अवली दो अवली काल में वो उपशमित हो जाते हैं, तो उसको हम नवक बंध नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके पूरे का उपशमने का कार्य तो वहां से शुरू हुआ है। तो ये यहाँ पर तो ये तीनों का जो सात नौ कशांक का उपशमने का काल है वो तो सबका समान है। पुरुष वेद में क्या डिफरेंस है, उसका उदय काल ज्यादा टाइम है, अन्य का उदय कहाँ तक है, स्त्री वेद के उपशमना के काल तक ही वो सवेदी है, बाद में अपगत वेदी होकर उपशमना करते हैं, और पुरुष वेदी उसका अपना सवेदी रहते हुए उपशमना करता है। ये सब में डिफरेंस, हमने यहाँ कुछ चेंजेस किए थे, ये जो 276 नंबर का पॉइंट है उसकी चौथी लाइन में ये क्या है, स्थिति को स्थापित करता है लिखा है ना, स्थिति को स्थापित करता है, उसके आगे जरा पेंसिल से ब्रैकेट में डालना जो प्रथम स्थिति, ब्रैकेट डाल को उसको जरा डिलीट लिखना बाजू में, और फिर उस वहां से लेकर तीसरी लाइन में नीचे आना, नपुंसक वेद का उपसामना काल है उतना आयाम वाले काल के बराबर, आगे के जो दो शब्द है और वह दोनों ब्रैकेट में रखो या राउंड करके, तो उतना आयाम वाले काल के बराबर काल यद्यपि व्यतीत हो गया है, ऐसा पढ़ना डायरेक्ट, बीच वाले दो अक्षर नहीं पढ़ेंगे हम, तो ये अर्थ सही घटित होता है। और नीचे यह इस सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है ना, वो स इधर का ई इधर का उधर कर देना, अब हम आगे पढ़ेंगे। ख्याल में आई कुछ बातें वेद की, अटपटी है सारे, अभी ये विषय थोड़ा हटके है फिर भी हम देखते हैं। यहाँ पर ये पुरुष वेद से चढ़ रहा है, ये स्त्री वेद से चढ़ रहा है, ये नपुंसक वेद से चढ़ रहा है, जहां तक सवेदी है वहां तक वेद का बंध है। यहाँ बंध कितने कितने का हो रहा है, कौन कौन सी मोहिनी की बात, यहाँ बंध किस किस का हो रहा है, अश्विन पांच का बंध रहा है, चार संजुलन, और यानी यहाँ भी पांच का बंध है, यहाँ भी पांच का बंध है, यहाँ भी पांच का बंध है, तो इनका बंध पांच का कब तक है, सवेद भाग तक, और इसका पांच का बंध कहाँ तक है, ऊपर तक, बात ख्याल में। अब क्षपक श्रेणी में क्या होता है, सत्ता की भी बात आती है ना, एक एक सत्ता में से नष्ट हो जाते हैं, थोड़ी हटकर बात है फिर भी यहाँ करूंगी मैं। नवे गुणस्थान में क्या होता है वो हमने देखा ना, पहले अन्य 16 कर्म नष्ट होते हैं, उसकी बात यहाँ हम नहीं लेंगे, हम केवल मोहिनी की सोचेंगे, मोहिनी में से क्या चला जाता है, हाँ 8 चले जाते, यानी 21 की सत्ता थी जब क्षपक्षिणी चल रहा था, तो अनंतानुबंधी नहीं है, दर्शन मोहिनी 3 नहीं है, 7 हो गए, क्षपक्षिणी है, क्षायिक समय दृष्टि होने चाहिए, और उसने आयु बांधी ही नहीं है, तो एक मनुष्य आयु है सत्ता में, अन्य 3 आयु की सत्ता नहीं है, यानी 10 की सत्ता नहीं। अभी हम मोहिनी की बात करेंगे तो 21 वाला है वो, 28 में से 7 कर्मों का नाश किया है, 21 की सत्ता के साथ वो चढ़ रहा है, मोहिनी की सत्ता केवल देखेंगे हम, चढ़कर फिर पहले क्या किया, 8 दशाओं का क्षय कर दिया, तो कितने रहे अभी उसके, 13 रहे। अब इन तीनों का ही 13 के 13 का सत्व है। अब यहाँ उपशामना की बात है, वहां क्षय की बात होगी, तो जो पुरुष वेद से चढ़ता है उसके जब तक नपुंसक वेद का क्षय नहीं किया था, क्षय की बात है यहाँ पर, यहाँ 13 का सत्व होता, जब उसकी क्षय पूरा हुआ तो 12 का हो गया, उसके बाद 11 का हो गया ना, परंतु इसमें से यहाँ 6 पूरे हुए, अभी पुरुष वेद है उसकी सत्ता में, तो 6 ही निकल जाएंगे, तो यहाँ 11 में से 6 गए, कितने रह गए, 5, और उसके बाद ऊपर 4 वगैरह जो कुछ, 5 4 3 2 नहीं हो जाएगा। अब स्त्री वेद से चढ़ने वाले को देखते हैं, यहाँ पर कितना है, ये 13 था, यहाँ 13 का था, 13 से यहाँ नपुंसक वेद का क्षय हो गया, 12 का हो गया, 12 के बाद 11 हो गया, 11 में से 7 चले जाएंगे, तो यहाँ पर 4 का होगा, इसके 5 का सत्ता वाला स्थान नहीं होगा, कुछ अलग बात है ये, है ना, ये हमने कभी पढ़ी नहीं है। हाँ, किया है वो तो फिर अलग बात है। हाँ, अब यहाँ पर देखो नपुंसक वेद वाला, यहाँ पर उसकी 13 की सत्ता है, यहाँ पर भी 13 की ही सत्ता थी, यहाँ तक उसकी 13 की सत्ता है, ये 13 की सत्ता उसकी यहाँ तक है, यहाँ दोनों की एक साथ नष्ट हो गई, तो 13 में से 11 हो गया और 11 में से 4 हो गया, यानी नपुंसक वेद 13, 11 और 4 होगा, त्रिवेदी 13, 12, 11, 4 होगा और पुरुष वेदी 13, 12, 11, 5, 4 होगा। हाँ, 13 में सत्ता में है ना, 6 9 कषाय, यानी 9 के 9 कषाय और 4 संगल है। साथ में हो जाते हैं क्योंकि उसके सत्ता के स्थान ऐसे ही है, उसको 12 वाला नहीं है स्थान, उसको 13 11 4 ऐसे तीन स्थान है। वो तो एक कहीं पर आता है किसी अपेक्षा, परंतु सत्ता के स्थानों में ये बातें ऐसी है, ये सत्ता वाले स्थान उसके, ये केवल मोहिनी की सत्ता की बात है। पुरुष वेदी के 13 12 11 फिर 6 कम करके 5 और फिर 4 होगा सत्ता की बात। श्रीवेदी वाले के 13 में से 12 फिर 11 और 7 एक साथ कम करके 4 का होगा, और नपुंसक वेद वाले के 13 में से डायरेक्ट 11 ही होगा क्योंकि श्रीवेद नपुंसक वेद एक साथ चले जाएंगे और फिर 4 का होगा। ये 13 समझ में ना, संज्वलन के 4 और 9 9 कषाय। हाँ, शिविर में ये इससे भी बहुत बढ़िया बातें आने वाली हैं। हाँ, बहुत नई नई बातें, अब ये सब उसके टेबल्स भी ऐसे आ जाएगी, अच्छे आएंगे। उसके कारण ये स्पष्टता ज्यादा होती है। अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे। आप आने ही वाले हो? नहीं? अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा है। अब आगे का सूत्र देखेंगे हम। एदम नानत्तम नौंसय, बू हो गया वो, नौंसय वेदेन उवट्ठिदस्य सेसा व्यप्पा तेचेव कायोवा। नपुसक वेद से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव की अपेक्षा यह नानापन है, शेष विकल्प वे ही, यानी पुरुष वेद के समान ही कहने चाहिए। शेष विकल्प ने क्रोध मानवाय, बहुत अच्छा। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा नानापन का अनुसंधान करके अब पद परिपूरण रूप बीज पद का अवलंबन करके चढ़ते हुए और उतरते हुए उपशामक विषयक तथा यहाँ उपयोगी पद विशेषों के अल्प बहुत्व का प्ररूपण करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं। पद परिपूरण बीज पद, पद यानी वहां कोई शब्द जो है, अब बीज पद यानी वहां जो कोई गाथा में पद आए हैं उसकी बात बताएंगे। यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे सूत्र। एतो पुरुष वेदेन सह कोहेन उवट्ठिदस्य उवसामगस्य पढ़म समय अपूवकरणम आदिम कादुन जाव परिवदमानगस्य चरिम समय अपूवकरणोक्ति एदिस्य अध्याये जानी काल संयुक्तानि पदानि तेसिम अप्पा बहुओं वत्त इस्सामो। यानी यहाँ क्या करने वाले हैं, पुरुष वेद और स्त्रोत संज्वलन के साथ जो श्रेणी पर चढ़ा है, अपूर्वकरण के पहले समय से लेकर चढ़ा पूरा और उतर का पूर्वकरण के अंतिम समय में पहुंच गया, इसमें जो जो पद आए हैं, यानी किसकी उपशामना का काल कितना था, कितना जो कुछ है, उसका अल्प बहुत वो यहाँ पर बताएंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। अब इससे आगे शर या पुरुष वेद, ये फास्ट पढ़ते हैं ना तो ये ख्याल में नहीं आता कितने अक्षर रह जाते हैं। पुरुष वेद के साथ संज्वलन क्रोध कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर गिरने वाले उसी उपशामक के अपूर्वकरण के अंतिम समय तक काल संयुक्त अर्थात काल की अपेक्षा जितने पद है, काल की अपेक्षा पद है ने? किस विशिष्ट प्रोसेस के लिए कितना काल लगता है, तो काल की अपेक्षा जो पद है उनके अल्प बहुत्व को बतलावेंगे। पुरुष वेद और क्रोध संज्वलन के उदय से जो श्रेणी पर चढ़ा है उसे अधिकृत कर, यानी उसको अभी बेस बनाकर, उसी के अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर गिरने वाले उसी के अपूर्वकरण के अंतिम समय तक जघन्य और उत्कृष्ट अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल आदि से संबंध रखने वाले काल विशिष्ट जो पद है, यानी जिसमें काल की अपेक्षा लगती है, जैसे अनुभाग कांडक घात होता है उसका काल बहुत छोटा होता है, तो अनुभाग कांडक घात अपूर्वकरण के शुरू में ज्यादा बड़ा होगा के ऊपर जाके बड़ा होगा, बड़ा कब होगा, या स्थिति कांड घात हो रहा है, स्थिति की बात जल्दी समझ में आ रही। तो अपूर्वकरण के स्टार्टिंग में जो स्थिति कांड घात था वो बड़ा है के ऊपर चलकर वो बड़ा होगा, नीचे बड़ा, क्यों, जहां विशुद्धि ज्यादा है, पहले स्थिति कटती गई तो कटती हुई स्थिति का उतना चला गया जो रिमेनिंग है उसका फिर उतना भाग रह गया, तो छोटे छोटे हो जाएंगे ऊपर, कांडक का प्रमाण भी छोटा होगा और काल का प्रमाण भी कम होगा। तो ये यहाँ अल्प बहुत, यहाँ कांडक का आयाम नहीं बता रहे, काल की अपेक्षा रखकर यहाँ बात करेंगे कितना काल होता है, अंतर करने के लिए कितना काल लगा, एक ही स्थिति बंद कितने काल तक चला, ये बातें यहाँ बताएंगे। यानी स्टार्टिंग से अंत समय तक जघन्य और उत्कृष्ट अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल आदि से, जघन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट वो शुरू में होगा पूर्वकरण के, और जघन्य ऊपर चलकर जहाँ जहाँ तक कांडक घात है वहां तक होगा। ये कांडक घात कहाँ तक होगी मोहिनी में,
मोहिनी में कांडक तो इससे शब्द था अभी तक पूर्वकरण के अभिवृत्तिकरण में अंतरकरण के पहले तक,
अंतरकरण के पहले तक होगा,
पर अभी तक नहीं, अभी अभी मैंने सोचा कि पहले नहीं इसे सोचा था पूर्वकरण,
अभी बताएंगे कहाँ होते हैं क्या होते हैं। कहाँ गया मेरा, आदि से संबंध रखने वाले, यानी कहाँ उत्कृष्ट है जघन्य है, या जघन्य से उत्कृष्ट कितना है, थोड़ा ज्यादा है कि कुछ गुणित प्रमाण में है, ये बातें यहाँ बताएंगे। काल विशिष्ट जो पद है उनके अल्प बहुतों को बतलावेंगे, इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वाक्य है। तम जहा वे जैसे प्रकृत अल्प बहुतों की प्ररूपणा का अवसर देने के लिए आया हुआ यह सूत्र सुगम है, यानी प्ररूपणा का यह विषय बता रहे हैं कि ये इस तरह से है ऐसा कहेंगे। सौवत थोवा जघन्य अनुभाग खंडय उत्कीर्णधा, अनुभाग कांडक का जघन्य उत्कीर्ण काल सबसे थोड़ा है, यानी एक अनुभाग कांडक का घात होने के लिए जितना काल लगता है वो, उसमें भी जघन्य उत्कृष्ट दो भेद करेंगे तो वो सबसे जघन्य वाला सबसे छोटा है। हमने एक पहले बात देखी थी, जितने अंतर्मूर्त काल में एक स्थिति कांडक घात होता है, हाँ आपको याद है ना, अनुभाग कांडक घात हजार होते, वो भी हर एक का अपना अपना अंतर्मूर्त, यानी वो बहुत छोटा है। अनुभाग कांडक का जघन्य उत्कीर्ण काल सबसे छोटा है, क्योंकि श्रेणी पर चढ़ने वाले सूक्ष्म सांप्रायिक के ज्ञानावरणादि कर्मों का जो अंतिम समय संबंधी अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल होता है, और मोहनीय कर्म का क्या लिखा है देखो बराबर, अंतरकरण करने पर जो वहां संबंधी अंतिम अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल होता है। जब तक अंतरकरण पूरा नहीं हुआ तब तक होता है, क्योंकि हमने देखा ना अंतर करने का काल और वहां का जो स्थिति कांडक काल और वहां का स्थिति बंध काल, तीनों का काल एक समान है। अंतर करने का काल, वहां वाला स्थिति कांडक का काल और अनुभाग ने अनुभाग तो हजार होते एक साथ समाप्त होंगे वहां पर, तो समाप्त नहीं समझे।
ये अंतरकरण के अंतिम समय में ये चलेगा ना?
ये अंतर करने के लिए इतना काल लगा, ये काल की बात चली, अंतर नहीं बता रहे। उतने काल में उतने ही काल वाला एक स्थिति कांडक घात का काल होगा, उतने ही काल में वहाँ स्थितिबंध का अंतर्मूर्त प्रमाण काल भी हमेशा उतना का उतना रहता है। और इसके अंदर हजारों अनुभाग कांडक घात हुए, यहाँ का जो अंतिम अनुभाग कांडक करने के लिए जो काल लगा वो यहाँ पर लिया मोहनी में, और ज्ञानावरणादि में उनके तो अंतर नहीं है ना, तो सूक्ष्म सांप्राय के अंत में वो ले लेंगे, वहां का लेना उसका। हाँ, अपनी अपनी जो यथाइति है। ये अनिवृत्तिकरण में अंतर करने का काल, अनिवृत्तिकरण में अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीत गया तब वहां जाके वो अंतर करता है। अंतर करने के लिए जितना काल लगा अंतर्मूर्त में करता है वो अंतर, उस समय वहां स्थिति कांडक घात भी हो रहा है, उतने ही काल में एक पूरा होगा, उसके बाद स्थिति कांडक रुक जाएंगे। अंतिम कांडक वहां पर, ये अंतिम कांडक कब कहां होता है? वहां पर होता है जहां अंतर समाप्त होता है, उसी समय वहां का एक अनुभाग कांडक समाप्त हुआ, लास्ट वाला। यहां अनुभाग कांडक की बात कर रहे हैं, स्थिति कांडक की बाद में करेंगे, वो तो अल्पभूतों में आगे के स्थान पर आ जाएगा। कल ये फिर दोबारा शुरू से ले लेंगे हम अनुभाग कांड, यानी अल्पभूत यहीं से शुरू होता है ना, एक नंबर वहीं से लेंगे। जावानी के ज्ञान ते सुझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन
Namo Buddhaya 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 Namo Buddhaya